ग्रंथ श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 11।
विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममय पुमान देवऋषि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। विष्णु भगवान विष्णु द्विज ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का क्रिया मूल जिसका मूल है यज्ञों एवं वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना। यज्ञ साक्षात यज्ञ भगवान विष्णु को जो यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। धर्म में धार्मिक सिद्धांतों से पूर्ण पुमान परम पुरुष देव ऋषि देवताओं तथा व्यास देव एवं नारद जैसे महान ऋषियों का पितृ पूर्वजों का भूतानां तथा समस्त जीवों का धर्मस्य धार्मिक सिद्धांतों का च भी परायणम आश्रय। अनुवाद ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात आकार हैं और वे समस्त देवताओं महान पितरों और सामान्य जनता के आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का वर्त किया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस तरह सारे देवता यज्ञों द्वारा प्रसन्न ना किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। तात्पर्य चूंकि विष्णु ही ब्राह्मण संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं अतः हिरण्यकश्यप की योजना विष्णु वध करने की थी, क्योंकि यदि विष्णु का वध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण संस्कृति के विनाश होने पर यज्ञ संपन्न नहीं हो सकेंगे और यज्ञ के अभाव में नियमित वर्षा होनी बंद हो जाएगी। यज्ञात भवति पर्जन्य, इस तरह सारे विश्व में उत्पात होंगे जिससे देवता पराजित हो जाएंगे। इस श्लोक से हमें स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वैदिक सभ्यता के नष्ट होने से मानव समाज किस तरह विश्रृंखलित हो जाता है और ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होने वाले वैदिक कर्मकांड बंद हो जाते हैं। कलौ शूद्र संभवा, चूंकि आधुनिक जगत की जनसंख्या अधिकांशता शूद्र है अतः ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और इसे उचित मार्ग पर ले आना अत्यधिक कठिन है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की संस्तुति की है जिससे खोई हुई ब्राह्मण संस्कृति सरलता से पुनर्जीवित हो सकेगी। हरेर नाम हरेरनामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण ब्राह्मण संस्कृति तो विनष्ट हो ही चुकी है, कोई क्षत्रिय सरकार भी नहीं है। उल्टे आजकल की सरकार प्रजातांत्रिक है जिसमें कोई भी शूद्र मतदान द्वारा सरकारी बागडोर अपने हाथ में लेकर शासन संभाल सकता है। कलयुग के विषाक्त प्रभाव के कारण शास्त्र भागवत 12:2-13 का कथन है, दस्यु प्रायेषु राजसु, सरकार दस्यु अथवा लुटेरों की नीतियां धारण करेगी। क्षमा कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणों से कोई आदेश नहीं मिलेंगे और यदि मिले भी तो कोई क्षत्रिय शासक नहीं होगा जो उनका पालन कर सके। सत्यु को छोड़कर पहले भी जो असुरों का प्रभाव था तो हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय सरकार को विनष्ट करने की योजना बनाई थी और वह सारे संसार में अराजकता फैलाना चाह रहा था। यद्यपि सत्युग में इस योजना को कार्यान्वित कर पाना दुष्कर था लेकिन शूद्रों तथा असुरों से पूर्ण इस कलयुग में ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है और केवल महामंत्र के कीर्तन से ही पुनर्जीवित हो सकती है। इसलिए कृष्णा भारमित आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात ब्राह्मण को सरलता से पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है जिससे लोग इसी जीवन में सुखी तथा शांति में रह सकें और अगले जीवन में ऊपर उठने की तैयारी कर सकें। इस प्रसंग में श्रील माध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से यह श्लोक उद्धृत किया है। विप्र यज्ञ विप्र यज्ञादि मूलम तू हरित्यार्थसुरम मतम हररेव ही सर्वस्य मूलम सम्यक मतो नृप। हे राजन, असुरगण सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य तो यह है कि हरि ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। अतएव हरि कीर्तन या संकीर्तन आंदोलन के प्रचार द्वारा ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय सरकार स्वतः वापस आ जाएगी और लोग अत्यंत सुखी होंगे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का इस भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। भागवतम का 7वां स्कंद प्रारंभ हो चुका है और दूसरा इसका अध्याय है और इस अध्याय का नाम है असुरराज हिरण्यकश्यप। देखिए भागवतम में असुर के इनको आदि दैत्य भी बोला जाता है, असुरराज हिरण्यकश्यप। वास्तव में हिरण्यकश्यप हम सब जानते हैं भगवान के पार्षद हैं, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। तो उनकी ये कथा आती है और उनकी कथा का वर्णन क्यों होता है, क्योंकि इस ये स्कंद प्रारंभ होता है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि छठे स्कंद में वृत्तासुर का वध किया गया और फिर दिदी ने इंद्र के वध के लिए योजना बनाई, फिर भगवान ने इंद्र की रक्षा की। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान देवताओं की इतनी सहायता क्यों करते हैं, क्या भगवान पार्शल हैं, भगवान पक्षपात करते हैं, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये प्रसंग जब शुरू हुआ तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा था। तो फिर वो प्रसंग शुरू होता है, कब पूछा था, तो एक राजस्वी यज्ञ में जब शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया और सबके सामने शिशुपाल की आत्मा भगवान के चरण कमलों में प्रवेश करती है, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि शिशुपाल पूरा जीवन भगवान से द्वेष करते रहे और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, ये कैसे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान किस तरह से पक्षपात करते हैं, यही प्रश्न के मन में आया था। फिर नारद मुनि ने उनको समझाया कि वास्तव में शिशुपाल हिरण्यक्ष और दंतवक्र हिरण्याक्ष वास्तव में पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और वे वास्तव में जय और विजय थे। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा कि हिरण्यकश्यप का अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों, और फिर प्रहलाद तो दैत्य राज थे, और क्षमा करें, हिरण्यकश्यप दैत्य राज थे, उनके पुत्र प्रहलाद इन्हें इतने बड़े महाभागवत कैसे हो गए। तो ये प्रश्नों के उत्तर में फिर नारद मुनि हिरण्यकश्यप का कथा सुनाते हैं। तो हम देख सकते हैं जब भी एक सच्चाई से ईमानदारी से और विनीत भाव से कोई शिष्य अगर गुरु से प्रश्न पूछता है तो उसका तो लाभ होता ही होता है, जनसाधारण का कितना लाभ होता है। अगर नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न नहीं पूछा होता तो हमें आज हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनने को नहीं मिलते। और ये कथा किस लिए आई, क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न एक सच्चा शिष्य प्रमाणिक गुरु से हृदय से विनीत भाव से प्रश्न पूछता है, उसे आने वाली जनसंख्याओं का भी कितना लाभ होता है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पूछ से गए और मुझे के आम ये पूछा मैं कौन हूं, इसी प्रश्न को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी, जीव के स्वरूप के बारे में बताया और हम सब उसको चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और पूरी भगवद गीता का निर्माण हुआ जो कि पूरे आने वाली संसार का मार्गदर्शन कर रही है। तो ये गुरु और शिष्य के संबंध से अगर वास्तविक संबंध हो और वास्तविक प्रश्न उत्तर किए जाएं तो सबके लिए कल्याणकारी है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो प्रसंग है ये बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही रोचक है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, वास्तव में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, सुर और असुर, देवता और राक्षस। जो देवता गण है वो भगवान की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, असुर अपने इंद्र तृप्ति के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। हिरण्यकश्यप का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने समझाया, हिरण्य यानी कि सोना और कश्यप माने सॉफ्टवेयर यानी कि जो कि स्त्री और धन का भोक्ता बनना चाहता है। और प्रहलाद, प्रहलाद का मतलब है प्रकष्ट रूप में आह्लाद, विशेष आनंद, दिव्य आनंद। आह्लाद का मतलब जो हमेशा आनंद में रहे और प्रहलाद विशेष आनंद में। हम नरसिंह आरती गाते हैं प्रहलाद आह्लाद दाई में, कि भगवान प्रकट हुए हैं ऐसे अपने भक्त को आनंद देने के लिए जो हमेशा ही आनंद में रहते हैं। तो एक तरफ है प्रहलाद जो कि एक भक्त हैं और एक तरफ है हिरण्यकश्यप। और हम देखेंगे हम दोनों के अंदर हिरण्यकश्यप के अंदर भी भाव है, हम सबके अंदर हिरण्यकश्यप वाला भी भाव है, हम भोक्ता भी बनना चाहते हैं और भक्तों के संग में हमारे अंदर शुद्ध भक्ति करने का भी भाव है। तो हमारे अंदर ही हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद के अंदर युद्ध चल रहा है, दोनों भाव। आपको लगता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी लगता है हाँ जब हम बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं हमें खूब बहुत ही तरक्की करनी चाहिए, खूब प्रगति करना चाहिए, भोगने की इच्छा, और जब भक्तों के संग में आते हैं इसका क्या लाभ, फिर प्रह्लाद महाराज की तरह हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। तो दोनों ही भावों का अंदर हमारे अंदर युद्ध चल रहा है। किसकी विजय होगी ये निश्चित रहता है कि किस ढंग से हम इसको अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। बहुत ही विनीत भाव से हमें इस प्रसंग को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है नारद मुनि बता रहे हैं हिरण्यकश्यप के विषय में, श्री राधा राधिका रमन जी की कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव। तो नारद मुनि जी अब हिरण्यकश्यप के बारे में बता रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि हिरण्याक्ष का वध कर चुके हैं भगवान शुकर अवतार के रूप में, और हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ रहा है कि अपने भाई की मृत्यु का वो बदला लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि विष्णु को तो मैं अपने त्रिशूल से मार दूंगा, उसकी गर्दन को उसके सिर से अलग कर दूंगा और उसे खून से अपने भाई की मृत्यु को तर्पण करूंगा। और अब वो योजना बना रहा है। वास्तव में हिरण्यकश्यप की मुख्य योजना है देवताओं को तंग करना। उसकी शत्रुता देवताओं से है, विष्णु से नहीं है, क्योंकि देवता उसके मौसी के भाई हैं, चचेरे मसेरे भाई हैं, भाई भाइयों में लड़ाई होती है। तो बस उसको देवताओं को अपने भाइयों को परेशान करना है। अब जो जो अपने उसके भाइयों का साथ दे रहा है वो उसके शत्रु बन गए। उसकी मुख्य शत्रुता देवताओं से है। अब वो देखता है कि देवताओं कैसे तंग करना है। पिछले स्कंद में देखा था माता दिति की भी शत्रुता इंद्र से थी। उसको विष्णु से केवल यह शिकायत थी कि विष्णु ने इंद्र का सहयोग क्यों दिया, लेकिन वो एक ऐसी संतान चाहती थी जो कि इंद्र का वध कर दे। तो उसकी भी जो दिति थी असुरों की माँ, वो भी अपने दो पुत्रों के वध हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के वध का बदला इंद्र से लेना चाहती थी, विष्णु से नहीं। इसी ढंग से हिरण्यकश्यप भी खाली देवताओं को तंग करना चाहता था। अब विष्णु ने देवताओं का साथ दिया इसलिए देखा कि मैं विष्णु का भी वध कर दूंगा। तो अब वो योजना बना रहा है मुझे क्या क्या करना है। तो उसका प्लान है पूरा, ये पूरा चैप्टर उसके प्लानिंग बता रहा है हिरण्यकश्यप का योजना। और वो बहुत बड़ा पावरफुल असुर है, उसे बोला सबसे पहले तो मैं विष्णु को मार दूंगा, विष्णु की गर्दन उसके सिर से अलग कर दूंगा, ये काम मैं कर लूंगा, उसकी चिंता मत करो। अब अपने असुरों को आदेश दे रहा है तुम ये करो, जब तक मैं विष्णु का वध करता हूं तुम पृथ्वी पर जाओ, और पृथ्वी लोक में जो लोग ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय शासन कर रहे हैं, जो लोग तपस्या कर रहे हैं, निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, जो लोग यज्ञ कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक अध्ययन कर रहे हैं, अनुष्ठानिक व्रत कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उनका वध कर दो। ठीक है, ये हिरण्यकश्यप का प्लान है कि ब्राह्मणों का, ब्राह्मण संस्कृति का तुम जाके पृथ्वी लोक पर वध कर दो, विष्णु का वध मैं कर दूंगा, दोनों तरफ से देवता पीड़ित हो जाएंगे। बस मुख्यतः देवताओं को तंग करना है, क्योंकि जो विष्णु है वो वृक्ष की जड़ है, देवता उसकी शाखाएं हैं। जब मैं विष्णु का वध कर दूंगा तो देवता अपने आप सूख जाएंगे। दूसरी इनकी जो सप्लाई लाइन है, ये जो नीचे की पृथ्वी के लोग यज्ञ करते रहते हैं, इस यज्ञ को बंद करवाता हूं, यहां से भी सप्लाई बंद हो गई, वहां से भी सप्लाई बंद हो गई, ये बेचारे पीड़ित हो जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा, ये उसकी पूरी योजना है। और प्रभुपाद बताते हैं जो इसकी योजना है ये बिल्कुल आजकल हमें आधुनिक समाज की योजनाएं लगती हैं। जब किसी समाज में वैदिक संस्कृति का पतन होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि हिरण्यकश्यप का प्लान था कि पूरे समाज में पहले तो विष्णु को बाहर करो, फिर ये बेकार का ये शास्त्रों का पढ़ना, शास्त्रों की बातें सब तकियानोसी हैं, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और किसी ढंग से हम आर्थिक विकास करें, जीवन का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास रह गए, ये असुरी सभ्यता है। सभ्यता भी नहीं कहना चाहिए, असभ्यता जो भी हम कहेंगे, ये जीने का तरीका असुरी जीने का तरीका है। तो वास्तव में प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी न किसी ढंग से हमें अब इस ब्राह्मण संस्कृति को दोबारा स्थापित करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलयुग में सभी लोग क्या है, कलो शूद्र संभव, और कलयुग में जो दानव है असुर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ब्राह्मण संस्कृति को दोबारा स्थापित करना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं और ये ब्राह्मण संस्कृति का विनाश हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ब्राह्मण संस्कृति होता क्या है। श्रील प्रभुपाद अपने अलग अलग भागवतम के तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति से उद्देश्य है कि हम एक वर्णाश्रम के अनुसार अपने जीवन को जिए। हमें समझना होगा कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही विकसित बुद्धि और विकसित चेतना प्राप्त हुई है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब योनियां भुक्त योनि है। बाकी सब योनियों में हम देखते हैं कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे प्रकृति के नियमों से कोई कड़ा संघर्ष नहीं लड़ रहे हैं। जैसे उनकी अवस्था प्राप्त हुई है वो चुपचाप उस अपनी सजा को भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में विकसित चेतना और विकसित बुद्धि के कारण मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करना चाहता है, और इसके लिए उसका पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है और पुश्तैनी संघर्ष है। उससे पिछले उसके पिताजी दादाजी सबका यही संघर्ष चलता आया है कि जीवन के स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए। पिछली पीढ़ियां, ये पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी, सब ये के सब इसी संघर्ष में जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य योनि को सभ्य बनाया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, नियमित किया जाए, ताकि वो अपने उच्च चेतना और विकसित बुद्धि का सही तरह के कर्मों को करने में उपयोग करे। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम, चार वर्ण और चार आश्रमों की स्थापना की गई। चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार वर्ण और चार आश्रम से, वर्ण का अर्थ है किस तरह का हम कार्य करते हैं, जैसे जिसकी प्रकृति है, जैसे जिसकी नेचर है, उसके अनुसार उसको कार्य दिया जाए, और सब वर्णों को आश्रम में रखा जाए, आश्रम के सिस्टम में ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास, ताकि वो आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर सके। एक सिस्टमैटिक सिस्टम भगवान ने भगवद्गीता में मनुष्य समाज के लिए दिया, और इससे पूरा ब्राह्मण संस्कृति वैदिक संस्कृति स्थापित होती है और सब लोग आपस में कॉपरेट करते हैं, और मुख्य उद्देश्य है संसिद्धिम हरितोषणम, कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। ये वैदिक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होता है कि पूरे समाज में शांति बनी रहती है, जीवन की आवश्यकताएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज हमें देखें, घर पालन करने के लिए कलयुग में कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी घर के लिए कमा लेता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये 2 वक्त का अपने परिवार को पालन करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और अब कलयुग में हम देखते हैं पीने के लिए हमें पानी भी नहीं मिल रहा है ना। आज से 20-25 वर्ष पूर्व अगर किसी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी बिकेगा और इतना महंगा पानी बिकेगा, और आगे आने वाला 3रा युद्ध पानी के ऊपर होने वाला है। ये क्या एडवांसमेंट है हमारे साइंस की। अब देखिए हम कैसा पानी पी रहे हैं, बड़े बड़े विकसित देशों में जो सीवर वाटर है, जो मल मूत्र से त्यागा हुआ पानी है, उसको हम साफ करके वापस पीते हैं। ये एडवांसमेंट है। साधारण भाषा में लोग बोलते हैं थूक के चाटने वाली बात है, तो मल मूत्र में त्याग के उसको पीने वाली बात है। ये साइंटिफिक एडवांसमेंट है। इतनी एक जीवन की मूल पानी, वो भी हमें नहीं मिलता। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में दूध की नदियां बहती थी, अब यहाँ पानी की नदियां भी सूख रही हैं। सीवर है बस वही है जो है, वो हमारी एकमात्र उम्मीद यही है ना। पहले लोग यमुना के तट में नदी के तट पे रहते थे, अब हम गंदे नाले के तट पे रहते हैं, और यही गंदे नाले का तट हमें पानी देगा आगे, यही हमारी उम्मीद है। यहीं पर अपना गन डालेंगे, इसी को साफ होकर दोबारा पिएंगे। ये हमारी संस्कृति, आप देखिए ये एडवांसमेंट है। जीवन की मूल आवश्यकताएं वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ये जीवन की मूल आवश्यकताएं पहले बड़ी आसानी से मिल जाती थी। सही समय पर वर्षा होती थी, रात्रि को वर्षा होती थी ताकि दिन में किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब रात्रि को मच्छर काटते रहते हैं, गर्मी में व्यक्ति परेशान रहता है, और जब दिन में बाहर जाना होता है बारिश, सारा काम धंधा चौपट, सारे ट्रैफिक जाम, सारे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक, आप बताइए। क्योंकि प्रकृति मनुष्य के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रही, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का बहुत शोषण किया है, सारे नियमों को तोड़ डाला है, हदें पार कर दी है। उसको पता ही नहीं है, अपनी लालच में, अपनी काम वासनाओं से प्रेरित होकर उसने भगवान के शासन की पूरी रूप से अवहेलना की हुई है। तो ऐसे समाज में प्रभुपाद बोलते हैं, चोरों के समाज में शांति कैसे हो सकती है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस, जो कृष्णा भ्रमित आंदोलन है, ये पूरे समाज को ओवरहॉल करने के लिए है।
दोबारा से ये हम सबके जिम्मेवारी है, पूरा कंप्लीट ओवरहॉलिंग चाहिए। दोबारा से ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करने के लिए कृष्णा भारामृत आंदोलन बनाया गया है। जब तक ये ब्राह्मण संस्कृति स्थापित नहीं होगी, हम शांति में जीवन नहीं बिता सकते। पूरा जीवन केवल संघर्ष करने में ही निकल जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान कमाने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। फिर व्यक्ति क्या सोचेगा, मुझे ध्यान पूर्वक जप करना है, भागवतम पढ़नी है, प्रचार करना है, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। हम सोचें हमारे व्यक्तिगत अपनी मुश्किलों को देखें, हम चाहते हुए भी अच्छी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि वातावरण में इतना रजोगुण और तमोगुण भरा पड़ा है, चारों तरफ काम वासना ही काम वासना है। आप जहां देखिए सारे पोस्टर, सारे एडवर्टाइजमेंट्स हम लोगों के अंदर, जो हमारे अंदर का जो हिरण्यकश्यपु है उसको जागृत करने के लिए है, और जो हमारे अंदर का प्रह्लाद है उसको मारने के लिए है। इसलिए हमेशा हम हर व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में, हर व्यक्ति सड़क पे आप जाइए, छोटी छोटी बात पे आप देखिए, हमने देखा उस दिन पूरा ट्रैफिक जाम, तो बड़ी बड़ी गाड़ी वाले लोग उतरे हुए दिखने में जेंटलमैन, एक दूसरे गला पकड़ के ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, जस्ट फाइटिंग लाइक डॉग्स, मारने को तैयार है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की गाड़ी टच होगी रास्ते में, बस छोटी छोटी बात पर लोग लड़ने को तैयार है। इतनी उत्तेजना, इतना अंदर एजिटेशन, तो ये कलह का युग है। इसमें कैसे हम ब्राह्मण संस्कृति द्वारा से स्थापित कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक ये ब्राह्मण संस्कृति स्थापित नहीं होगी, हमारा जीवन भी शांतिपूर्ण नहीं होगा और हम अगले जीवन के लिए भी सही तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बता रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, सो कॉल्ड ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये सबसे पहले इसने क्या किया, विष्णु को बाहर निकालो, भगवान के गॉडलेस बनाओ से सोसाइटी को। कैसे गॉडलेस बनाते हैं, बचपन में जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं हम सबको सिखाया जाता है कि सब कारणों का कारण भगवान नहीं है। सब कारणों का कारण क्या है, एक बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। जो जीवन है वो पदार्थ से आया है, जीवन ये आत्मा ये सब वहम की बातें हैं, ये वहम है, ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। जीवन ये शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त, अगला जीवन वगैरह कुछ नहीं है, ये हिंदू माइथोलॉजी है, यह सब कुछ नहीं है। आप बचपन में आप जितने मर्जी बच्चे को आरती करवा लीजिए, भगवान के बारे में बताइए, जब वो स्कूल में जाता है ये पढ़ाई करता है। और हम सब जानते हैं कि स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई करके इसको नौकरी मिलेगी, ये धन कमाएगा। अरे बेवकूफ, अगर मैं सिखा दूंगा कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, और जाके इसने पेपर में लिख दिया, कौन नंबर देगा इसको, कोई देगा है? ये जानने से कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, उसको बीए की डिग्री मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई नौकरी नहीं मिलने वाले। एक बार हिजोड़ने जयपदा का साई महाराज कैलकट किसी बंगाल के गांव में गए थे, तो वहाँ अपनी अपने वो प्रिंटियाँ कुछ काम करा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहाँ पर एक माता जी आई जो कि टीचर थी, वो बच्चों के क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा रहे थे। तो जयपदा का महाराज ने देखा कि उससे सबसे पहला प्रश्न था, तुम्हार परिचय की, कि तुम्हारा परिचय क्या है। तो जब तक हमारा, मैंने उस टीचर से पूछा कि आप क्या आशा रखते हैं कि बच्चे क्या लिखेंगे, तो टीचर ने हंस के बोला, क्या लिखना, ये लिखना है अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ रहते हो क्या। तो जब तक हमारा बोला, अगर वो लिख दे हमार परिचय आत्मा कि मेरा परिचय मैं आत्मा हूँ और मेरा असली कार्य है दासों का दास, तो टीचर हंस पड़े। तो जब तक हमारा, आप उसको कुछ नंबर देंगे, क्यों नंबर दूंगे, जीरो नंबर मिलेंगे, ये कोई उत्तर थोड़ी है। उत्तर तो ये है कि आपका नाम क्या है, पिताजी का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन है। तो माता पिता भी जानते हैं कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि ये उसको रोटी कपड़ा और मकान दिलाएगा, समाज में उसको स्टेटस दिलाएगा। आजकल जो लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भक्ति भी कर रहे हैं, वो जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है भगवान के प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करना, है ना, एक जीव की जीन्स को दूसरे जीव की जीन्स से मिक्स करके नया जीव उत्पन्न करना। मैं सब कारणों का, मैंने एक नया जीव उत्पन्न कर दिया, जर्सी गायें बना दी मैंने, मैंने चूहे की जीन्स को बैंगन में मिला के एक नया जीव बना दिया, एक नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ भगवान की सत्ता को समझेगा। तो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम विष्णु को हमारे जीवन से बाहर करने के लिए, सोसाइटी को गॉडलेस बनाने के लिए है। और हम सब जाने अनजाने में हिरण्यकश्यप की इस योजना में पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा भाग ले रहे हैं। और एक तरफ से हम प्रह्लाद बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ से हम हिरण्यकश्यप की योजना में जाने अनजाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो हम कैसे नहीं, हमारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको इस बात को? आप सब महसूस करते होंगे, हम सब के जितने भी ग्रह आश्रम हमारे भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा जीवन कितना आर्टिफिशियल है। अब बचपन ही हमारा आर्टिफिशियल, इनफैक्ट हमारा जन्म ही आर्टिफिशियल होता है आजकल। आप देखेंगे, बुरा मत मानना, आज में से जितने भी स्त्रियों से हम पूछते हैं, ज्यादातर जब बच्चे पैदा होते हैं कोई भी नेचुरल तरीके से पैदा होता ही नहीं है। क्या करते हैं आजकल डॉक्टर लोग? सीजेरियन ऑपरेशन करते हैं। हमें याद है जब हम बचपन में इंग्लिश ग्रामर सीख रहे होते थे तो एक सेंटेंस पढ़ते थे, ग्रामर की बुक्स में आते थे, अ लेडी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड ऑन द बर्थ। पढ़ा था किसी ने सेंटेंस? हमें अ लेडी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड ऑन द बर्थ मतलब रियल बर्थ, BERTH, कि एक स्त्री ने रेलवे के बर्थ पे एक बच्चे को जन्म दिया। मतलब कि उस समय ये घटनाएं बड़ी नॉर्मल होती थी कि बच्चा पैदा करना इतना आसान होता था, इतना नॉर्मल होता था कि ट्रेन में जाते जाते कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती थी। मतलब कि इट वॉज सच ए नॉर्मल थिंग। आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते, सोच सकते हैं ऐसा? बच्चा माँ के घर में ही होता है, कॉम्प्लिकेशन शुरू ही होती है कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, वो उल्टा हो गया, पलटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रीमेच्योर हो जाएगा, उसके अंग विकसित नहीं हो रहे, क्या करना पड़ेगा? काट के बाहर निकलना पड़ेगा, अननेचुरल बर्थ। और फिर मृत्यु भी अननेचुरल। पहले जो व्यक्ति मरता था पहले से उसको बता देता था मैं जाने वाला हूँ, सारे रिश्तेदार तैयार हो जाते थे, उसको भगवदगीता का पाठ पढ़ाते थे, सुनाते थे और सबको देखते हुए खुशी खुशी वो प्राण त्यागता था। अब पता ही नहीं, अचानक कभी भी कोमा में चला जाएगा, कुछ नहीं पता। अभी हम हॉस्पिटल में थे तो एक माता जी अपने रिलेटिव को ICU में देख के आई, फिर अपने ICU में एक ही बंदा जा सकता है, वापस से आई तो क्या दिखा रही थी? अब वो जाके उसने मोबाइल से अपने दादा या पिताजी का फोटो ले लिया, ये देखो बेटा ऐसे हैं, मैंने भी देख लिया क्या है, सारी की सारी ट्यूबें लगी हुई हैं, कुछ पता नहीं जिया है मरा हुआ है क्या है, कुछ नहीं पता, मशीनें चल रही हैं और सारी ट्यूबें अंदर हैं। तो अननेचुरल वे से, आर्टिफिशियल तरीके से हमारा जन्म होता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम प्राण छोड़ते हैं और पूरा जीवन बिल्कुल आर्टिफिशियल, दिखावटी जीवन, कृत्रिम जीवन, हिपोक्रिटिकल, दोगला जीवन। तो इसमें कहां खुशी मिल सकती है बताइए, कहां हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? इतना इम्पर्सनलिज्म, इतना पहले हर चीज में पर्सनलिज्म था, गाय और बैल होती थी, गाय और बैल चराकर हम खुद व्यक्ति खेती करता था, फसल बोता था, आप बीज बोता था, उसको फसल उगाता था, काटता था, घर में अनाज के भंडार होते थे, माता जी लोग खुद चक्की से गेहूं पीसती थी, गाय और बैल की वैल्यू करते थे क्योंकि सब लोग मेहनत करते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। अब सब लोग बचपन से ही कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं और शरीर ढीला पड़ जाता है, पहले वो चक्की पीसी थी, अब वो जिम में जाके ऐसे हाथ हिलाते हैं और पैसे देते हैं। पहले व्यक्ति खुद जाके मेहनत करता था, अब ट्रेडमिल पे भागता है और ट्रेडमिल देखिए जीवन वो तेजी से आगे भाग रहे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है बेचारा, और इसे पसीने पसीने होकर बोलते हैं कुछ किया मैंने और फिर पैसे देते हैं। इतना आर्टिफिशियल जीवन। तो कैसे हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? पूरा का पूरा आर्टिफिशियल कल्चर है ये, कल्चर क्या बोले इसको। तो अब हमें देखिए कि हरेक के घर में जैसे अब बच्चे हैं और कैसे बच्चों का पालन करना है बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है, कि जबरदस्ती हम बोल रहे हैं इसे? कितने बच्चे, कितने लोगों को लगता है कि बच्चों का पालन करना समस्या नहीं है, है ना? प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग शूद्र संभव, कलयुग में सारे के सारे लोग शूद्र, क्योंकि बच्चे संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए गर्भाधान संस्कार से। गर्भाधान संस्कार का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष संभोग करने से पहले सही चेतना में अपने आप को लाएं और किस तरह की आत्मा को अपने गर्भ में आकर्षित करना चाहते हैं वो निश्चित करें, उसके लिए प्रार्थना करें और सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करते हुए फिर वो संभोग करते थे। वैदिक संस्कृति में प्राइवेट लाइफ के लिए कोई स्पेस नहीं होता था, सब कुछ पब्लिक होता था, और आज की संस्कृति में, आज के जीवन शैली में सब कुछ प्राइवेट है और कुछ भी पब्लिक नहीं है। वो उसी का ये परिणाम है कि हमारे में कोई सहन शक्ति नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भावना नहीं है। बचपन से ही उसको एक कंप्यूटर दे जाता है, एक डेस्कटॉप दे दिया जाता है अलग से, बैठ अलग से, हर के लिए अलग अलग कमरा है, बच्चों के लिए अलग कमरा, बूढ़ों के लिए अलग कमरा, ये अलग कमरा, पहले सब इकट्ठे रहते थे। तो अगर किसी को स्त्री का संग भी करना है, वो पूरे वैष्णव समाज को बताता था, उनसे आज्ञा लेता था, उनका आशीर्वाद लेता था। ये एक यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने काम वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं। तो जब ऐसे प्रकष्ट रूप से संग किया जाएगा तो एक प्रकष्ट जीवात्मा मां के घर में प्रवेश करेगी, उसका पालन पोषण अपने आप बहुत आसान होगा, क्योंकि वो अच्छे संस्कार लेकर उत्पन्न हुआ है। आजकल बुरा ना माने, माता जी लोग स्त्रियां हैं, मदिरा पान, मांसाहार कर करके जो उसका शरीर है वो शमशान घाट बन गया है। अब शमशान घाट में कौन उत्पन्न होगा? भूत प्रेत। और एक घर में कितने कोई भूत प्रेत चाहेगा? मैक्सिमम एक। पहले लोग बोलते दो नहीं, अब एक भी नहीं, अब बोलते एक भी नहीं चाहिए। कौन पालेगा इस भूत को? बच्चे इतना परेशान करते हैं, कौन पालेगा इनको? क्या करें? चलो अब इंद्र तृप्ति कर लेते हैं, गर्भ विरोधक चीजें यूज करेंगे, गर्भपात कर लेंगे, भूत नहीं चाहेंगे। बच्चा भूत की तरह बाहर निकलता है। इतने बुरे संस्कार हैं और पूरी सोसाइटी में देखिए भूत, तभी तो इतना आप त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ, और हम लोग सोच नहीं रहे कि इसका समाधान क्या है। फिर उस जो उत्पन्न हुआ, जो भी उसको बोलिए, उसको डाल देते हैं तथाकथित मॉडर्न स्कूल में। अब मॉडर्न स्कूल में क्या सिखाया जाता है? भगवान को तो सबसे पहले बाहर कर दिया, और फैमिली में कोई कल्चर है नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ये बहुत जरूरी है आजकल, इसके बिना कैसे किसी का काम चलेगा। दोनों वर्किंग है, नौकरानी के हाथ में बच्चा पलता है, नौकरानी उसको क्या संस्कार देगी? या क्रच में छोड़ देंगे उसको? और बच्चे को कोई संस्कार नहीं, उसको घर से प्रेम नहीं मिल रहा, विश्वास नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रही, उसकी क्या व्यक्तित्व उसका विकसित होगा? उसके पास केवल एक ही शरण रह जाती है, वो क्या है? इंटरनेट, वही उसकी शरण है बचपन से ही। और वो आगे जाके क्या बनेगा और समाज में क्या किसी का सुधार करेगा, कैसे वो खुश रह सकता है और दूसरों को खुशी दे सकता है, ये हम सबके जीवन में हो रहा है। बताया जाता है किसी के जीवन में सबसे मुश्किल समय दो समय है, एक वो जब वो खुद टीनेज में होता है, दूसरा वो जब उसके घर में कोई टीनेज बच्चे होते हैं। लाइफ के सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस हैं इनको संभालना। आप सबके घर में ये हो रहा होगा, जो बच्चे टीनेज अवस्था से गुजर रहे हैं, इनका क्या हम मार्गदर्शन करें? लोग हमारे पास आते हैं, बताइए प्रभु जी क्या करें, अब बहुत देरी हो चुकी है, क्या करें? और आगे आने वाली जनरेशन, उसके बाद ये नई जनरेशन को उसका क्या होगा, हम सोचें। तो ये हमें मॉडर्न होने का अर्थ ये नहीं है कि वैदिक संस्कृति का हम तिरस्कार कर दें। वास्तव में हम मॉडर्न हो सकते हैं, आधुनिक हो सकते हैं, वैदिक संस्कृति को स्वीकार करके। वैदिक संस्कृति जब हम स्वीकार करेंगे तो हम हमेशा आत्मा पे के स्तर पे आने का प्रयास कर रहे हैं, और जब कोई जीवात्मा आत्मा के स्तर पे शरीर में कार्य कर रही है तो हमेशा नयापन उसको लगेगा। मॉडर्न का अर्थ है नयापन, आधुनिक। ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है और आप इसको नया रखने का प्रयास कर रहे हो, संघर्ष तो होगा ही होगा, हम कैसे मॉडर्न रह सकते हैं? तो इसलिए इन शास्त्रों की बातों को हमने अपने अच्छे ढंग से स्वीकार करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस ब्राह्मण संस्कृति को पहले हम अप्रिशिएट करें कि हमारे लिए इसको अपने जीवन में उतारना कितना आवश्यक है। हम लोग जब आते हैं शुरू शुरू में इस इस्कॉन संस्था में, और हमें बहुत उत्साह होता है अपने जीवन को बदलना है, और जब हम शुरू करते हैं प्रोसेस, और जब प्रभुपाद की भागवतम के परपट्स को हम पढ़ते हैं, तो बड़ा कन्फ्लिक्ट आता है अंदर, कैसे संभव है, इन शास्त्रों की बातों को हम कैसे उतार सकते हैं? बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आसपास की जो सोसाइटी है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आसपास के समाज का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो समाज में कुरीतियाँ, जो समाज में गलत बातें हैं, उनका हमारे पर दुष्प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, आमा राग्या गुरु होइ तार ए देश, कि हम सबको गुरु बनकर पूरे देश का उद्धार करना है। यानी कि संस्कृति को बदलने का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम सबकी है। इस कल्चर को चेंज करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम कल्चर को चेंज नहीं करेंगे तो कल्चर हमें चेंज कर रहा है। ये जो पाश्चात्य देशों का प्रभाव है, ये हमारे जीवन पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण हमारे से 16 माला भी ध्यानपूर्वक नहीं हो पाती। हम सब लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतने ज्यादा चिंतित हैं कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते। और जितना मर्जी हम बातें समझाएं हमें बातें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है अपना और अपने परिवार का पालन करना। वही संभव नहीं है, उसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आगे हम क्या आध्यात्मिक चेतना को विकसित करेंगे? तो शुरुआत कहां से की जाए? शिला प्रभुपाद इसमें एक ही सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या सोल्यूशन है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कि हम खूब हरि नाम का प्रचार करें। अब इसका सोल्यूशन दो स्टेजेस पे है। जब हम हरि नाम का प्रचार करेंगे तो हरि नाम का प्रचार करके लोगों को हम ब्राह्मण संस्कृति के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, जैसे कि शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए, तो पाश्चात्य देश में जाकर उन्होंने जाके पहले यह प्रचार नहीं किया कि सारा मीट खाना बंद करो, सब नशा बंद करो, ये अवैध संबंध बंद करो, निजला एकादशी रखो, ये करो वो करो, नहीं बोलो, जस्ट चैंट, केवल चैंटिंग करो, हरे कृष्ण हवन का जप करो, कीर्तन करो। जब हुआ तब शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी कुछ तपस्या, कुछ नियम, फिर उन्होंने चार नियम बताए, फिर वैदिक संस्कृति प्रभुपाद धीरे धीरे स्थापित की। इसी ढंग से हमें हरिनाम का खूब प्रचार करना है और समाज में जो दुष्प्रभाव फैला हुआ है लोगों को ब्राह्मण संस्कृति से आकर्षित करना है। अब एक बार इस आंदोलन का अंतरिंग हिस्सा बनने के बाद, जैसे कि आप सब आप माला का जप करते हैं और गंभीरता से भक्ति को ले रहे हैं, अब आगे क्या? अब संघर्ष शुरू होता है। तो इस ब्राह्मण संस्कृति को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उतारना है और सामूहिक रूप से अपने परिवार में और समाज में स्थापित करने की योजनाएं बनानी है। आप समझे? पहले तो लोगों को आकर्षित करना है कि वो इस हरि कृष्ण आंदोलन से जुड़े, वो होगा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। दूसरा, जब वो आ जाते हैं इस आंदोलन में, उसके बाद जैसे कि हम सबका इस समय जो मुख्य चुनौती है, कैसे इस ब्राह्मण संस्कृति को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें, अपने पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, कैसे इसको, ये चुनौती को हमें देखना है। प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 3रा श्लोक है, परीक्षित महाराज का प्रसंग है, जब परीक्षित महाराज से वो अपराध होता है ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण के प्रति, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चीज बता रहे हैं कि ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। परीक्षित महाराज का कहना है कि तीन बातें बहुत आवश्यक है, ब्राह्मण संस्कृति, गायों की रक्षा और भगवान भगवत चेतना। तो इन तीनों का हमें सहयोग देना है। सबसे पहले गायों की रक्षा। गायों की रक्षा से प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्राप्त होता है, ब्राह्मण संस्कृति विकसित होती है और ब्राह्मण संस्कृति से भगवत चेतना विकसित होगी। ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है भगवत चेतना हम विकसित करें। इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम आपको एज इट इज पढ़ के सुनाते हैं। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। इतना स्ट्रांग पर्पट प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हमारे पास धन है और जो हमारे पास सामर्थ्य है, उसका उपयोग हमने गायों की रक्षा, ब्राह्मण संस्कृति की स्थापना और ईश्वर चेतना के विकास में नहीं लगाई, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो राज्य और वो घर निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति और संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को और पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। हमें गायों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, गायों के दूध का हमें उपयोग करना चाहिए। गाय के दूध में सभी गुणों को बताया गया है। गाय का दूध ग्रहण करने से हमारे जो मानसिक तंतु हैं, जो हमारे मस्तिष्क के तंतु, वो विकसित होते हैं और फिर हम इस सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। जो भैंस का दूध और ये मशीनों का दूध, जो आजकल पता नहीं दूध है, केमिकल है, कुछ पता नहीं है, जो भी हमें प्राप्त होता है थैली में, वो पता नहीं क्या है और उसके कारण सारे केमिकल्स आते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे केमिकल्स खा खा के जो शरीर से पसीना भी निकलता है, उस पसीने में इतनी बदबू होती है और उस बदबू को दूर करने के लिए हम और केमिकल यूज करते हैं, डिओड्रेंट और परफ्यूम्स, सारा बेकार का जीवन है। लेकिन जो गाय का दूध है, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स हैं, सब जो इस शरीर को और इस मन को विकसित करने के लिए चाहिए सब गाय के दूध में उपलब्ध है। तो आज हमें क्या गाय का दूध मिलता है? गाय का घी, गाय का दूध बड़ी दूर की बात है ना। गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में इतनी इसकी वैल्यू है, तो क्यों ना हम गायों की रक्षा करें। तो गायों की रक्षा करने के लिए हमें योजना बनानी चाहिए, इसको अपने जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन को ये प्रभावित कर रहा है। आज हमारे समाज में गायों की दुर्गति है, इससे मैं प्रभावित हो रहा हूँ, हमें समझना होगा। ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है कि गायों की रक्षा करो, गौ माता की जय, क्योंकि हम बाहर आ गए। हमें सोचना चाहते हैं गायों की रक्षा नहीं करेंगे, मेरा जीवन कितना दुष्प्रभावित हो रहा है, मेरी आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं हो पा रही। अब हम एक पूरे हम देखे तो इस्कॉन के भक्तों की संख्या कम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं गायों की रक्षा करने के लिए, ये सोचें, सोचना है, ताकि इससे मेरा आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित हो और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका जीवन भी सुरक्षित हो। किसी भी सभ्य समाज में 5 चीजों को हमेशा रक्षा दी जाती है, गायों को, ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को और बूढ़ों को। आज देखेंगे समाज में इन 5 की दुर्गति है। गाय बेचारी प्लास्टिक खाती रहती है, गायों की हत्या की जाती है, और भारत सबसे पहला देश है जहां गायों के मांस का एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको दिखाएंगे वो वीडियो कैसे गायों को स्लॉटर किया जाता है, इतनी बुरी हालत है। गायों की रक्षा हम नहीं कर रहे, ब्राह्मण कोई बचे ही नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति नहीं बचे, स्त्रियों को निर्लज्ज बनाया जा रहा है ना, कि निर्लज्जता उनका मॉडर्न होने का एक तरीका है ना। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि लज्जा स्त्री का गहना है, आभूषण है, और हम लोग को एजुकेशन के नाम से फ्री मिक्सिंग कर रहे हैं, और आजकल स्त्रियां कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ऑफिस में जाते हैं, स्त्रियों के लिए मदिरा पान करना, धूम्रपान करना, अवैध संबंध, ये बहुत कॉमन हो गया है। ये हम सोच भी नहीं पाते हैं, सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से समाज की दुर्गति हो रही है। और जहां पर स्त्री की शीलता भंग होती है, स्त्री सत्यत्व का पालन नहीं कर पाती, उस समाज में कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए स्त्रियों को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। अक्सर लोगों के अंदर ये गलत फहमी है कि मुसलमानों ने, मुगल ने आके पर्दा सिस्टम शुरू किया, नहीं, ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के अंदर एक पति भी अपनी पत्नी से इतना आसानी से घुल मिल नहीं सकता था। घर के अंदर जो स्त्री भी होती थी बड़े इंटरनल कमरों में रहती थी, इंटरनल चैम्बर में, बहुत अंतरंग कमरों में, बाहर नहीं आती थी ऐसे। आजकल तो पति पत्नी छोड़ो, कैसे फ्री मिक्सिंग है ना, बच्चों का ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर बड़ा कॉमन हो गया है। और आजकल कुछ दिन पहले एक पेरेंट हमारे पास आए, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि मेरा लड़का स्कॉन में आना शुरू हुआ है, बहुत हालत खराब हो गई है उसकी, आपने उसको क्या सिखा दिया है, क्या हो गया? कह रहा कुछ पता नहीं क्या करता है, कुछ है ही नहीं, पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब जाता ही नहीं उसके पास। पेरेंट की प्रॉब्लम बन गई, गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाता, कोई पिक्चर नहीं देखता, क्या है, क्या कर दिया? ये देखो जो लड़की हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, माँ की भी यही चिंता है, मेरी बच्ची को बॉयफ्रेंड नहीं है, है ना। अब बच्ची को शादी करनी है, माँ कहती खुद ही ढूंढ ले जो ढूंढना है, वो खुद ढूंढ रही है, हंटिंग कर रही है ना। ये क्या है, क्या ये क्या है, ये कल्चर है, इससे क्या मतलब, क्या होगा, क्या ये हमारे घर की लड़कियों की हालत है, पूरा मत मानिए। और हम ऐसे बैठे हुए, हमने बोले आजकल सब चलता है, ये कॉमन फ्रेज है। प्रभु जी इसमें प्रभुपाद तो कुछ और कह रहे हैं, क्लास में कुछ और सुना था, और आपके घर में क्या चल रहा है? तो दीक्षित भक्त हैं, आजकल सब चलता है, चलता है, ऐसे चलता जाएगा, जीवन निकल जाएगा, ये खोखला जीवन रहेगा हमारा, कोई रियलाइजेशंस नहीं होंगी। जब मनुष्य जीवन जिसके लेवल है वो हो नहीं पाएगा। सच्चाई का जीवन जिए, सच्चाई को स्वीकार करें, क्या करना है, क्या करना है ये सोचें। ऐसा नहीं कि हार मान जाए, घुटने टेकते हिरण्यकश्यप के सामने कि जैसा आप कहेंगे आदि दैत्य हम वैसा ही करेंगे। प्रहलाद महाराज की तरह हमें संघर्ष करके इस ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करना है, और उसमें स्त्रियों और बच्चों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्त्री है वो आगे जाके मां बनेगी, और मां बच्चे को क्या संस्कार देगी, आगे वाली पूरी जनरेशन स्त्री के चरित्र पर निर्भर करते हैं, और स्त्री का कोई चरित्र हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। पिता माता पिता का ये है कि स्त्री को किसी ढंग से पढ़ा के पैसे कमाने योग्य बना दें, क्यों पता नहीं कल क्या हो जाए, डाइवोर्स हो जाए तो और होगा ही डाइवोर्शन। पहले से ही तैयारी इस जंग से कराई जा रही है कि आगे कुछ हो ना जाए, इसके साथ जरूर होगा। अगर आप उसको इस जंग से ट्रेनिंग इस जंग से दे रहे हैं कि कल आके घर में आके बैठ गई तो बैठेगी, जब आप ट्रेनिंग ही ऐसा दे रहे हैं। वो पति से ज्यादा कमाती है, क्या काम करेंगे? कैसे वो घर, स्त्री और पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की ट्रेनिंग, दोनों की शिक्षा बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से होने चाहिए। उसका अलग महत्व है, उसका अलग महत्व है, उसको हम पहचाने। पूरे पूरे भारत भूमि पे हुई मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये जो हमारे पास वैदिक शास्त्रों का धन है, इसको हमने पूरे विश्व को देना है, ना कि विश्व की गंदगी को अपने जीवन में उतारना है। उल्टा कार्य हम कर रहे हैं। हमारे पास ज्ञान है, बाकी सब जगह अज्ञानता है। अज्ञानता को हम अपने ज्ञान से रिप्लेस कर रहे हैं। एक बार श्री प्रभुपाद 1945 में बता रहे थे कि वो ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन ने एक गांव की लड़की थी, गोना होकर वो अपने पति से मिलने जा रही थी, और उसने बहुत बड़ा घूंघट किया हुआ था। उसी ट्रेन में, उसमें ब्रिटिश राजा था, ब्रिटिश राजा के ब्रिटिश संस्कार से एक प्रभावित एक शहरी लड़की थी, जिसने कि बड़े मॉडर्न तरीके से तथाकथित मॉडर्न कपड़े डाले हुए थे। तो वो उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी, क्या इतना बड़ा घूंघट, और जा जाकर उसको छेड़ती थी, घूंघट उठा रही थी ऐसे बेचारी, फिर घूंघट नीचे कर लेती। एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार जब उसने घूंघट उठाया, उस गांव की लड़की ने जोर से उसको थप्पड़ मारा। उस कंपार्टमेंट जितने लोग बैठे थे हंस पड़े, और पापा ने ताली बोले, बिल्कुल ठीक किया, इसको ऐसे सबक सिखाना चाहिए। ये खुद निर्लज है, तेरे को भी निर्लज बनाना चाह रहे हैं। तो ये लज्जा स्त्री का गहना है, ये हमें अप्रिशिएट करना है। और जो माता जी लोग हैं, वैष्णवीज हैं, उनको इस बात को समझना है, और इसको कैसे इंटेलिजेंटली अपने जीवन में उतारना है, और इंटेलिजेंटली इसका प्रचार करना है। तो स्त्री की रक्षा, बच्चों की रक्षा, बच्चों को हम स्कूल में भेज देते हैं, किस तरह के स्कूल्स में भेज रहे हैं, हम देखें क्या होगा इसका, वहां पे क्या वैल्यूज क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है। स्कूलों में जिस ढंग से एजुकेशन दी जा रही है, उसको शुरू से ही एक हाथ में माउस पकड़ा दिया जाएगा, वो सीधा टीचर से भी, और आजकल प्रश्न पूछता है, सब कुछ स्क्रीन में आजकल बताया जाता है, सब कुछ सामने आता है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इतना इम्पर्सनल वो तरीका है सब कुछ जानने का। तो उस बच्चे की हमने रक्षा करनी है। स्कूल में जाकर हम लोग क्या सीखते थे, हमारे लिए विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये हीरो होते थे। किसी स्कूल में प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया जाता है? कुछ नहीं। स्कूल में जो हम एजुकेशन पाते हैं, जो टीवी में देखते हैं, नारद मुनि हमें जोकर लगते हैं, नारायण नारायण करके आ जाते हैं हंसते हुए, बोले कौन सा जोकर आ गया ये है? क्या जो नारद मुनि इतने बड़े संत हैं, उनके हम वैल्यू नहीं समझ पाते, कितने मिसकंसेप्ट हमें दिए जाते हैं। और भगवान के भक्तों के सनातन धर्म का कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे लाइफ में। क्या हम बच्चों की रक्षा करेंगे, क्या उसके अंदर संस्कार जाएंगे? बस इसी चीज की उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि बड़ा होकर कैसे नौकरी करनी है, नौकरी करना सीख जाए, बस धन कमाना सीख जाए। और बाय चांस कोई बच्चा बोले कि अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मालूम चल गया है, अब मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, तो पिताजी जो कि हैं कि भक्त के रूप में हिरण्यकश्यप का रोल अदा कर लेते हैं, एकदम खबरदार खबरदार ऐसा नहीं करेगा। तो पूरा घर हमने देखा है कि एक बच्चा जो कि सिंसियर होकर भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहता था, माता पिता ने उसका ब्रेन वॉश किया, तांत्रिक ने बुला के उसका इतना ब्रेन वॉश किया, माता पिता के सामने वो तीन चार बड़ी बेहोश हो रहा है, उसको इतना टॉर्चर किया, वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। क्या करना चाह रहा था वो? भक्ति करना चाह रहा था। ये क्या क्या संस्कृति है हमारे समाज की, बताइए। सारे हिरण्यकश्यप घूम रहे हैं आसपास से, और हम सब, हमने भक्तों के परिवार में भी यही देखा कि भक्त लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चों को ये नहीं चाहेंगे कि वो प्रहलाद की तरह उत्कृष्ट भक्ति करें। भक्त होते हुए भी हमें ये चिंता है मेरे बच्चे की रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगी, ये चिंता है हमें। हमें भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान सबके पालन करता है, हमें ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं लगती क्योंकि हमें होते हुए देखे नहीं है। इसलिए जो हमें से कुछ गंभीर भक्त हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने जीवन में वास्तविक बदलाव आए और हम माध्यम बन सकें आने वाली जनरेशन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए, सबको इकट्ठा होकर ये सोचना है कि हम क्या अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, कैसे हम ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम गायों की रक्षा कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप सबके घर में गाय का दूध आना शुरू हो जाए, कैसा लगेगा आपको? चाहते हैं सब। आप सबके घर में असली सब्जी, असली दाल और असली गेहूं, जिसको आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक फूड ऐसे ही मिलता था, नेचुरल होता था। आजकल वो यूरिया यूज करते हैं, क्या क्या केमिकल्स डालते हैं, इंजेक्शन लगा के तरबूज को लाल किया जाता है, खरबूजे में इंजेक्शन लगा के उसको मीठा किया जाता है, जो पपीता है वो डिस्को पपीता है, उसमें कोई बीज ही नहीं है। ये क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं किसको, मतलब कि क्या खा के ठीक होंगे बीमार होंगे पता नहीं। बीमार व्यक्ति फल खा रहा है कि केमिकल खा रहा है कुछ नहीं पता। तो आप चाहेंगे आपको असली फल सब्जी सब आए, चाहते हैं सब, हम सब फायदा तो चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कौन करेगा। और समझ लीजिए दिल्ली के पास में ही कोई 50 या 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा हमारे पास ऐसा फार्म हो, जहाँ पर गायें हों, जहाँ पर कुछ लोग खेती कर रहे हों, और वहाँ से जो कुछ उगाएं, जो दूध हो, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, हम सब के लिए आ जाए, आपके लिए, लेना चाहेंगे आप हैं? क्या ये संभव है कि असंभव है? नहीं, सोचिए ध्यान से। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे तो बोलना ही पड़ेगा, टाइम हो गया, फटाफट बोलो संभव, नहीं तो डिस्कशन और आगे बढ़ेगी। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, हरे कृष्ण। बोले अगर संभव है कि नहीं है, सोचें इसके ऊपर कैसे करें, कौन कौन इसमें वॉलंटियर करना चाहेगा कि इस योजना को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। सोचे किस इस योजना में क्या करना है, क्या धन देना है, क्या दिमाग लगाना है, कितनी भाग दौड़ कर रही है, ये बहुत जरूरी है। जब ये होगा और फिर कितने लोग चाहेंगे एक ऐसा विद्यालय हो जहां हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही हो वैदिक संस्कृति के अनुसार, जिससे कि वो बड़ा के मूर्ख ना बने, वो जानता है कि आधुनिक समाज में क्या हो रहा है और सारे वैदिक संस्कृति को भी समझ रहा है। उसको आधुनिक समाज में रहने के लिए वैदिक शास्त्रों को भूलने की आवश्यकता नहीं है, और जाके उसका एक अच्छा चरित्र बने, एक अच्छा व्यक्तित्व हो, जो एक जिम्मेवार वो इंसान बन सके, एक अच्छा पुत्र बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा समाज का एक नागरिक बने, का एक ऐसा विद्यालय आप नहीं चाहेंगे? तो क्या ऐसा विद्यालय हमें कौन देगा? क्या आपको लगता है कि आज के समाज में कोई ऐसा विद्यालय है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके? तो कहां से वो विद्यालय आएगा, वो विद्यालय की उत्पत्ति कहां से होगी, आप बताइए। ऐसा स्कूल कहां से आएगा? क्या वो स्कूल आ सकता है कि नहीं आ सकता? कौन लाएगा उस स्कूल को? कौन सा वो मंत्र है जिससे वो स्कूल उत्पन्न हो जाएगा? कौन सी वो योगिक शक्तियां हैं जो हम स्कूल को उत्पन्न कर पाएंगे? क्या करना पड़ेगा उस स्कूल को लाने के लिए? सोचिए। और ये संभव है, हम कर सकते हैं, कैसा स्कूल ला सकते हैं। इस ढंग से हम देखेंगे अपने जीवन के हर पहलू को हम छू सकते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार, हम जी सकते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार। क्यों? ये नेक्स्ट स्टेज है, हरिनाम संकीर्तन लेकर अब हमारा जीवन ये है। हम पूर्ण रूप से पाश्चात्य देशों के अनुसार भी जीवन नहीं जीना चाहते, हम ना ही वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जी रहे हैं, हम त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं। ना हम पूर्ण रूप से भौतिक बनना चाहते हैं, ना हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो पा रहे हैं, हम बीच में लटके हुए हैं और फिर कंफ्यूज्ड, उससे हमारा क्या विकास होगा और आगे हम समाज को क्या दे पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि असली भक्त वो है जो कि भगवान की चिंताओं को दूर करे। चैतन्य महाप्रभु की यह चिंता थी कि पूरा यमन समाज है जो कि वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहा। उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि इनका उद्धार कैसे होगा, ये चैतन्य महाप्रभु की चिंता है। और हम सब श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी होने के कारण हम सबकी जिम्मेवारी है कि चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की चिंता को हम कैसे दूर करें। तो वो दूर हो सकती प्रभु द्वारे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित कर सकते हैं। इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी मध्वाचार्य जी को कोट करते हुए कहते हैं कि असुरगण ये सोचते हैं कि हरि या भगवान विष्णु का अस्तित्व ब्राह्मणों तथा यज्ञों के कारण है, लेकिन तथ्य तो यह है कि हरि ब्राह्मणों तथा यज्ञों सहित प्रत्येक वस्तु के कारण है। यानी कि असुर गणों की यह सोच होती है कि भगवान और भक्तों का अस्तित्व यज्ञों के कारण है। यानी कि हम लोग जब समाज में जो लोग कुछ भी दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसके कारण भगवान का अस्तित्व है। यानी कि हम भगवान को मेंटेन कर रहे हैं, भगवान और उनके भक्तों को हम यज्ञ, हम कुछ दान देकर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि भगवान हम सबको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो आंदोलन है ये हमारे सेक्रीफाइस पर निर्भर नहीं है। हम सोचें कि हम इस आंदोलन को या हम भगवान को हम भक्तों को हम मेंटेन करेंगे कुछ दान देके कुछ यज्ञ करके, नहीं, बल्कि जो भक्त लोग तपस्या कर रहे हैं, जो भक्त लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसी से पूरे समाज का पालन हो रहा है। आज भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तभी विश्व में थोड़ी बहुत जो वर्षा हो रही है और तभी कुछ अनाज की उत्पत्ति हो रही है और पूरे विश्व का पालन हो रहा है। जो थोड़ी बहुत ब्राह्मण संस्कृति बची है वो इस्कॉन, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस्कॉन ही ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये एकमात्र आशा की किरण है, एकमात्र जो कि इस पूरे समाज का उद्धार कर सकती है। इसलिए हम सबको आज के इस संदेश में थोड़ा ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस कृत्रिम जीवन से हम अपने आप को बचा सकते हैं और एक वास्तविक जीवन जी सकते हैं ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार। और इस ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, कैसे हम एकजुट होकर एक समुदाय बनकर कैसे इसको एक प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं जिससे कि ये भागवत का संदेश हम अपने जीवन में उतार सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है?
प्रभु जी, ये दो सवाल है। एक तो जब आप शुरू में तात्पर्य पढ़ रहे थे तो तात्पर्य में इस प्रकार का एक लाइन था कि मतलब ब्राह्मण जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो जिम्मेदार है इसके कि वो क्षत्रियों को और दूसरों को जो है यज्ञ करने के लिए जो है मतलब प्रेरित करें। सो मेरा सवाल ये है कि कैसे प्रेरित करें और यहाँ पर यज्ञ का क्या तात्पर्य है, मतलब अकॉर्डिंग टू ये करंट सिचुएशन क्या प्रेरित करें।
धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछ लिया। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है तो मैं ऐसे खाली एक ही हिस्से को छू पाया और बाकी हिस्से नहीं छू पाया मैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय शासन, और ब्राह्मण क्षत्रिय और क्षत्रिय शासन का आपस में मेलजोल है। और जो ब्राह्मण हैं वो क्षत्रियों को सलाह देते हैं कि किस तरह शासन किया जाए। तो आज के प्रसंग में, प्रासंगिक वातावरण में जहाँ की डेमोक्रेसी है तो कोई क्षत्रिय बचा नहीं, तो किस जंग से हम ब्राह्मण हैं अगर हैं तो उसको हम कैसे एडवाइस दें। तो इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है हरे कृष्ण गवर्नमेंट स्थापित हो जाए, तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हमें लोगों में इतनी जागृति लानी है, उतनी चेतना को इतना उपलब्ध करना है, किसी डेमोक्रेसी में फिर वो एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। और एक अच्छा व्यक्ति जब गवर्नमेंट में आएगा, एक कृष्ण कॉन्शियस, और इसके साथ साथ हमें सरकार में जो ऊंची पदवी पे लोग हैं उनको भी प्रचार करना है ताकि वो लोग कृष्ण भावनावृत के अनुकूल हो सके, और इस ढंग से हम एडवाइस देके उनको फिर इस पूरे वातावरण को बदलने का प्रयास कर सकते
हैं। दूसरा सवाल था, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने वो केस बताया, कई बार भक्तों के साथ ऐसा होता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कहानियाँ है सच में, किस तरह के ब्रेन वॉश किया गया, तांत्रिक नाम नहीं बताएंगे, तो हैं ऐसे केसेस हैं। कई बार बिल्कुल उल्टा भी देखा जाता है कि माँ बाप जो है बिल्कुल बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल के, तो शायद घर में पालने में तकलीफ हो रही है या बच्चा बहुत ज़्यादा उद्दंड है, जैसे हमने बताया भूत प्रेत पिशाच है, तो ले आते हैं और बोलते हैं कि अभी आप रख लीजिए इसको। तो जैसे कि इस्कॉन जो है मंदिर ना हुआ उनका अनाथालय हो गया, लाके जो है यहाँ पटक दिया लगे और अभी लीजिए इसको, अब आप अपने हिसाब से इसको पालिए, भूसी बड़ा कीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि नहीं अभी बाद में नहीं, अभी जब हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब आप बोलेंगे नहीं जी अभी क्या कहते हैं बच्चा जो अपने हिसाब से आना चाहता है करना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे मुझे इससे सूरत में, क्या हमें उनको क्या सलाह देंगे? हम हंस के टाल तो देते हैं उनको, बट क्या सलाह देनी चाहिए उनको,
क्या सलाह दें हम? सब जिम्मेवार लोग हैं और गुरु ना सियात, पिता ना सियात, माता ना सियात, माता पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपने संतान उत्पन्न की है तो इसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, और बस एक केवल भक्तों को इस्तेमाल कर लिया कि संभालो इसको और बाद में जब ठीक हो जाए दे देना। कई ऐसा भी होता है कि बच्चा बिगड़ा हुआ फिर ला देते हैं, जब उसको कुछ ठोक पीट करके ठीक कर देते हैं बोला वापस ले जा रहे हैं, अब इसको बहुत ज़्यादा भक्ति भी नहीं करानी, इतनी करानी थी बस, थोड़ी सी ऐसी बुरी आदतें सुधर गई हैं वापस दे दो, हम अब ये दोबारा मंदिर नहीं आएगा कि आगे बहुत आगे ना पड़ जाए, किसी भी चीज़ की हद अति अच्छी नहीं होती, अति अच्छी नहीं होती, इतना हो गया बैलेंस बना लें वापस ले जाते हैं। तो ऐसे माता पिता खुद भी वो परेशान रहेंगे और बच्चे को भी परेशान करेंगे, तो जो शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जाएगा तो कैसे सुखी रह सकता।
हरे कृष्णा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आज का टॉपिक था उसका हमें अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा ये रहता है कि हम इसको कैसे फॉलो करें। तो जैसे आपने बताया कि हमें गोरक्षा ब्राह्मण संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, तो उसके बारे में जैसे आपने बताया कि आज हमें एक मिल के प्रयास करना चाहिए, तो उसकी शुरुआत कैसे करें? जैसे अभी हमने लेक्चर सुना, अब हमारे अंदर फीलिंग है और बेसिकली वो कंटिन्यूस चली भी आ रही है, तो उसको हम इनिशिएटिव कैसे लें, उसके अंदर स्टार्ट कैसे करें आज?
स्टार्ट करके होगा।
जैसे आज अगर हम मान लो कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं यहाँ पे,
हाँ तो आप कैसे भी करिए, आप जब नया नया व्यक्ति स्कूटर सीखता था पहले इस टाइम में, तो फर्स्ट गियर डालने में बड़ा डरता था, फर्स्ट गियर डालते हुए स्कूटर उछलता था और गिर जाता था, वो फर्स्ट गियर में घर 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 करता रहेगा, फर्स्ट गियर नहीं डालेगा। और जो सिखाने वाला टीचर उसको बोलता है डाल डाल चल मैं पीछे बैठा हूँ संभाल, नहीं फर्स्ट गियर नहीं डालता उससे। आजकल तो खैर वो सब इलेक्ट्रिकल आ गया, बस चाबी घुमा शुरू हो जाता है, तो लोग ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि जो पुराने स्कूटर चलाने वो जानते हैं कि फर्स्ट गियर छोड़ने में कितनी मुश्किल होती है। तो वही है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार रिस्क लेना पड़ेगा, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठे हों, उसके ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें, और ज़्यादा ब्रेन स्ट्रॉमिंग की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास उदाहरण है अलग अलग दिशाओं में, इसमें बहुत काम हो रहा है। अभी हम तिरुपति गए थे, वहाँ पर उनका फार्म भी है, 300 गायें भी हैं, स्कूल भी है, सब कुछ है, ऐसे कितने ही मंदिर हैं जहाँ पे ऐसे समुदाय विकसित हो रहे हैं, बॉम्बे में है, तो हम जाके वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये होगा भक्तों के चुनाव से, जबरदस्ती हम बोले जी हम ऐसा करेंगे नहीं, आप सबको महसूस होना चाहिए अपने दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता है, तो तब इकट्ठे होकर, जब आवश्यकता होती है तो लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं, आवश्यकता होती है तो कोई कोऑपरेटिव बैंक खोल लेते हैं, आवश्यकता होती है आपस में कमेटी सिस्टम होता है ना, कुछ धन घुमाते रहते हैं, उसे को टोपी डालते रहते हैं, सब ये मैंने उठा ली तूने उठा ली ये करके धन घूमता रहता है, आवश्यकता है सबको। कितना यूनिक सिस्टम है, मतलब कि कोई MBA भी ये सिस्टम नहीं ढूंढ पाएगा, कैसे एक टोपी घुमानी है पैसे की, कमेटी उठा ली मैंने मेरी जरूरत पूरी होगी अब तुम ले लो मैं दे दूँ, क्या होता है अभी समझ नहीं आया मुझे। आवश्यकता पूरी करने के लिए नए नए सिस्टम इन्वेंट कर लेते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हमें आवश्यकता हो रही, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें कोई इन्वेंट नहीं करना, हमें तो देखा हो जो प्रभुपाद बता रहे हैं जो आसपास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कॉपी करना है बस। तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर घबराने की बात नहीं है, कुछ लोग इकट्ठे होइए और करिए, और जो आपको मार्गदर्शन चाहिए कोई सहायता चाहिए हम यहाँ पर हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से आप सबको सहयोग देंगे, बट ये आपके लिए आपको ही करना है, समझे? पीछे माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है?
हाँ जी,
पाप और अपराध में क्या अंतर है?
पाप और अपराध में आज के प्रसंग से कैसे रिलेटेड है?
वो थोड़ा दूसरा हटके है प्रभु जी।
हाँ, बाद में पूछेंगे इसको, ठीक। अभी खाली जो विषय है इसके ऊपर भी प्रश्न है किसी, ठीक। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की। गॉड प्रेम।